नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 23 अगस्त 2019 के साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार से कश्मीर में लगी पाबंदियों को हटाने का आह्वान किया। आतंकवाद और हिंसक अतिवाद का खतरा बन गया है एक जटिल चुनौती। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट, जल की खराब होती गुणवत्ता से आर्थिक संभावनाओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका। विश्व मानवीय दिवस पर लाखों करोड़ों जरूरतमंदों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले सहायता कर्मियों को श्रद्धांजलि। और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर। सुनिएगा एक खास रिपोर्ट। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार से उसके प्रशासन वाले कश्मीर में उन प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया है जो इस महीने के शुरू में लगाए गए थे। इनमें विचार व्यक्त करने पर पाबंदी, सूचना पाने और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शनों पर प्रतिबंध शामिल हैं। यूएन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि प्रदर्शनों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कम से कम ताकत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन हिंदी न्यूज के प्रमुख महबूब खान।
भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त को हटा दिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद लगाए गए इन प्रतिबंधों की वजह से क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। प्राप्त रिपोर्टों में कहा गया है कि 4 अगस्त की शाम से ही जम्मू कश्मीर में संचार माध्यमों पर लगभग पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसमें इंटरनेट सेवाएं, मोबाइल फोन नेटवर्क, केबल और कश्मीरी टेलीविजन चैनल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। विशेषज्ञों ने गुरुवार को जारी एक वक्तव्य में कहा कि सरकार द्वारा इंटरनेट और दूरसंचार नेटवर्कों को वजह बताए बिना बंद कर देना आवश्यकता और संतुलन के बुनियादी सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। इतने बड़े पैमाने पर प्रतिबंध जम्मू कश्मीर के लोगों को सामूहिक रूप से दंडित करने का एक तरीका बन गए हैं, जबकि उनका कोई कसूर भी नजर नहीं आता है। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया है, खासतौर से कश्मीर घाटी में लोगों के आवागमन और शांतिपूर्ण सभाओं को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में सैनिक व सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम भारतीय अधिकारियों को याद दिलाना चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध बुनियादी तौर पर असंतुलित हैं, क्योंकि इन प्रतिबंधों में किसी प्रस्तावित सभा की विशिष्ट परिस्थितियों पर गौर करने के विकल्प को नज़रअंदाज किया गया है। मानवाधिकार विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इस तरह की खबरें मिली हैं कि राजनीतिक हस्तियों, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, प्रदर्शनकारियों और अन्य लोगों की गिरफ्तारियों में बढ़ोतरी हुई है। स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि वो इन खबरों पर भी गंभीर रूप से चिंतित हैं कि भारतीय सुरक्षा बल रात में लोगों के घरों पर छापेमारी कर रहे हैं, जिनके बाद युवा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इन आरोपों पर भी गंभीर चिंता जताई कि हिरासत में लिए गए कुछ लोगों के पते ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। साथ ही लोगों को जबरन गायब करने का खतरा भी बढ़ गया है। ये खतरा विशेष रूप से बड़े पैमाने पर की जा रही गिरफ्तारियों और इंटरनेट व अन्य संचार माध्यमों पर लगी पाबंदियों के माहौल में और ज़्यादा बड़ा रूप ले सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि प्रदर्शनों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के तहत कम से कम ताकत का इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब यह है कि जानलेवा ताकत का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में सिर्फ तभी किया जा सकता है जब किसी की ज़िंदगी बचाने की ज़रूरत हो। ध्यान दिलाते चलें कि स्पेशल रिपोर्टर और वर्किंग ग्रुप संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ये विशेष प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार व्यवस्था में सबसे बड़ी स्वतंत्र संस्था है। ये दरअसल परिषद की स्वतंत्र जांच निगरानी प्रणाली है, जो किसी खास देश में किसी विशेष स्थिति या दुनिया भर में कुछ प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। स्पेशल रिपोर्टर स्वैच्छिक रूप से काम करते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी नहीं होते और उन्हें उनके काम के लिए संयुक्त राष्ट्र से कोई वेतन भी नहीं मिलता है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि आतंकवाद के दिए हुए जख्म बहुत गहरे होते हैं, समय बीतने पर उनकी गहराई कुछ कम हो सकती है, मगर वो जख्म कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। बुधवार को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने के लिए मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर महासचिव ने शब्द कहे। ये दिवस हर वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। यूएन प्रमुख ने कहा कि आतंकवाद अपने सभी रूपों और प्रकारों में एक वैश्विक चुनौती बना हुआ है। आतंकवाद से व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को बहुत गहरा और लंबी अवधि तक मौजूद रहने वाला नुकसान पहुंचता है।
The threat of terrorism and violent extremism is among our most complex challenges. In recent months, we have witnessed...
आतंकवाद और हिंसक अतिवाद का खतरा आज हम सभी के सामने एक बहुत जटिल चुनौती बना हुआ है। हाल के महीनों में हमने काबुल, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, लेक चाड बेसिन के अनेक इलाकों में हुए भयावह आतंकवादी हमलों को देखा है। इन क्रूर और निर्दयी हमलों में बहुत सी जिंदगियां दर्दनाक तरीके से खत्म हो गई। महासचिव गुटेरेश के शब्द। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया था। इस अभियान के तहत लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कानून का शासन मजबूत करने पर भी जोर दिया जाता है। उन्होंने आह्वान किया कि उन जिंदगियों को गहराई से देखना समझना चाहिए जो आतंकवाद के कारण हमेशा के लिए बदल गई हैं। आतंकवाद का शिकार होने वाले लोगों की सहायता के लिए बहुपक्षीय और दीर्घकालीन सहायता ढांचा विकसित किए जाने की भी हिमायत की गई है। इसमें सरकारों, सिविल सोसाइटी और साझेदार संगठनों का सहयोग बहुत अहम माना गया है। इस दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में एक फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। आतंकवाद का शिकार हुए कुछ साहसी पीड़ितों ने भी इस प्रदर्शनी में शिरकत की और उन्होंने आप बीती सुनाते हुए नफरत को हराने की भी हिमायत की। विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि जल की गुणवत्ता बदतर होती जा रही है, जिससे भारी प्रदूषण के शिकार इलाकों में आर्थिक संभावनाओं पर बुरा असर पड़ेगा। मंगलवार को जारी इस रिपोर्ट में सचेत किया गया है कि जल की खराब गुणवत्ता एक ऐसा संकट है जिससे मानवता और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो रहा है। इस रिपोर्ट पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
विश्व बैंक की रिपोर्ट क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस के अनुसार कीटाणुओं, सीवर, रसायनों और प्लास्टिक के मिश्रण से नदियों, झीलों और जलाशयों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है और पानी जहर में तब्दील हो रहा है। तत्काल कार्रवाई के अभाव में जल की गुणवत्ता का बिगड़ना जारी रहेगा, जिससे मानवीय स्वास्थ्य पर असर पड़ने के साथ साथ खाद्य उत्पादन में भी भारी कमी आएगी और वैश्विक आर्थिक प्रगति में अवरोध खड़े हो जाएंगे। जल की गुणवत्ता घटने का दंश झेलने वाले देशों में आर्थिक संभावनाओं में एक तिहाई की कमी का अनुमान बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पर आधारित है। जल में जैविक प्रदूषण को BOD के जरिए मापा जा सकता है और इससे परोक्ष रूप से जल की गुणवत्ता का भी पता चलता है। जब BOD एक निश्चित सीमा को पार करता है तो स्वास्थ्य, कृषि और पारिस्थितिकी तंत्रों पर असर पड़ता है और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि में एक तिहाई की कमी आ सकती है। कृषि में खाद्य के रूप में नाइट्रोजन के इस्तेमाल पर विशेष रूप से चिंता जताई गई है, क्योंकि इसके जल में घुलने से उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इस रिपोर्ट में जल के अंधाधुंध दोहन, बढ़ते खारेपन, सूखे, तबाही लाने वाले भीषण तूफानों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इन वजहों से कृषि योग्य भूमि की उत्पादकता प्रभावित हो रही है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने विश्व मानवीय दिवस पर उन सभी महिला मानवीय सहायता कर्मियों को श्रद्धांजलि दी है जो लाखों करोड़ों जरूरतमंद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही हैं। इस दिवस पर जारी अपने संदेश में उन्होंने अपील की है कि मानवीय काम में जुटे लोगों की अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पूरी जानकारी के साथ महबूब खान।
विश्व मानवीय दिवस सोमवार 19 अगस्त को 10वीं बार आधिकारिक रूप से मनाया गया, जिसके जरिए संयुक्त राष्ट्र ने उन लाखों मानवीय सहायता कर्मियों के योगदान को सम्मान दिया जो विश्व के सबसे खतरनाक स्थानों पर संकटमय परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर लोगों के जीवन की रक्षा के लिए सहारा दे रहे हैं। 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को एक आतंकवादी बम हमले में निशाना बनाया गया था, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में इराक में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डी मेलो भी मारे गए थे। इस हमले के 5 साल बाद यूएन महासभा ने 19 अगस्त को हर साल विश्व मानवीय दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। वर्ष 2019 में विश्व मानवीय दिवस पर महिला सहायता कर्मियों के प्रयास रेखांकित किए गए हैं, जो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल होती हैं और सबसे आखिर में लौटती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अपने संदेश में ध्यान दिलाया कि संकट में फंसे आम लोगों की मदद करने से लेकर बीमारियों के फैलने के बाद के हालात से निपटने तक महिलाएं मानवीय कार्यों में अग्रिम मोर्चों पर जुटी हैं।
This year, we pay special tribute to women humanitarians and the huge difference they make for millions of women, men and children in urgent need.
महासचिव कह रहे थे कि इस वर्ष हम महिला मानवीय सहायता कर्मियों का विशेष रूप से अभिवादन करते हैं, जो लाखों करोड़ों जरूरतमंद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही हैं। संकट में फंसे आम लोगों की मदद करने से लेकर बीमारियों के फैलने के बाद हालात से निपटने तक महिलाएं मानवीय कार्यों में अग्रिम मोर्चों पर जुटी हैं। उनकी उपस्थिति से सहायता अभियानों का दायरा बढ़ता है, जिससे वे ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश का महिला सहायता कर्मियों के योगदान को अभिवादन। विश्व भर में 2.5 लाख से ज़्यादा महिला सहायता कर्मी हैं, जो कुल सहायता कर्मियों का 40% हैं। लेकिन मानवीय राहत के कार्य में जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। मानवीय राहत प्रयासों में जुटे सहायता कर्मी खतरनाक हालात में काम करते हैं, जहां उनके हमलों में मारे जाने, घायल होने, हिरासत में लिए जाने या फिर अगवा कर लिए जाने का जोखिम रहता है। अगस्त 2003 से अब तक 4,500 सहायता कर्मियों के साथ ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। हर सप्ताह उन पर औसतन 5 हमले होते हैं।
जलवायु परिवर्तन का मुद्दा मौजूदा समय की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती बनकर उभर रहा है, जिससे पार पाने के लिए समाधान लगातार तलाशे जा रहे हैं। लेकिन क्या आज के युवा कंप्यूटर प्रोग्रामर कोडिंग के जरिए जलवायु संकट का समाधान ढूंढ सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में रीबूट द अर्थ एक नई प्रतियोगिता शुरू की है, जिसकी मदद से शिक्षा जगत, नागरिक समाज और युवाओं के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देते हुए जलवायु आपात स्थिति का समाधान ढूंढने का प्रयास हो रहा है। दिल्ली से अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
रीबूट द अर्थ प्रतियोगिता के भारत चैप्टर का आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली के पास स्थित गुरुग्राम की अंटल लैब में। 17 से 18 अगस्त तक चलने वाले इस ग्लोबल हैकाथॉन में भारत के विभिन्न स्थानों से आए कंप्यूटर प्रोग्रामरों, वैज्ञानिकों और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों ने शिरकत की और कोडिंग के जरिए जलवायु संकटों से संबंधित स्थानीय समस्याओं के हल तलाश करने की कोशिश की। ये हैकाथॉन मलेशिया, फिनलैंड, भारत, मिस्र और जर्मनी की यूनाइटेड नेशंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब्स यानी अंटल में अगस्त के महीने में आयोजित की गई हैं। इस अभियान के तहत हर देश, इलाके और समुदाय की जरूरतों पर आधारित एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा, जिससे जलवायु संकट पर युवाओं के बीच जागरूकता फैले और उससे निपटने के लिए नए तरीके इजाद किए जा सकें। भारत में OICT के प्रमुख चांद कौशल ने बताया।
रीबूट द अर्थ एज द नेम सजेस्ट, जैसा आपको नाम से ही पता चलेगा, इज बेसिकली टू एड्रेस द क्लाइमेट चैलेंज, द प्रॉब्लम्स, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इफ यू सी नोटिस इन टुडेज एरा, कि आजकल जो हो रहा है, जैसा चल रहा है, बाढ़ें आ रही हैं हर जगह, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सो ओवरऑल उन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए टेक्नोलॉजी से क्या हेल्प की जा सकती है, क्या ऐसे सोल्यूशन बनाए जा सकते हैं जो टेक्निकली इन चीज़ों को हैंडल कर पाएँ।
ये थे भारत में OICT के प्रमुख चांद कौशल के शब्द। भारत में आयोजित प्रतियोगिता में देश के विभिन्न इलाकों से कुल 84 प्रतियोगियों की 24 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का विषय था जलवायु और महिलाएं। यूनिसेफ की इनोवेशन प्रोग्राम विशेषज्ञ नीलम पॉल ने बताया कि इस विषय का चुनाव करने के पीछे क्या सोच रही।
पृथ्वी का पूरा पॉपुलेशन अगर आप देखें, अगर आधे से ज़्यादा महिलाएँ हैं, तो आप उनको पीछे छोड़ के कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि या तो वो सोल्यूशन बनाने में, उसका इस्तेमाल करने में, उसकी पूर्ति करने में कहीं ना कहीं आप महिलाएं जुड़नी चाहिए इस सॉल्यूशन के साथ. जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं द मोस्ट वल्नरेबल जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो महिलाएं हैं, वो बच्चे हैं. एक माँ अफेक्ट होती है तो बच्चे अफेक्ट होते हैं. एक माँ को अगर आप अवेयरनेस उनकी बढ़ाते हैं तो माताएं ज़्यादा अपने परिवार को एम्पावर कर पाती है.
यूनिसेफ की इनोवेशन प्रोग्राम विशेषज्ञ नीलम पॉल के शब्द. 48 घंटे तक दिन रात मेहनत कर रही सभी टीमों में बेहद उत्साह देखा गया. प्रतियोगियों ने विषय वस्तु को समझकर कई तरह के समाधान बनाए और उन्हें उत्साह के साथ पेश किया.
वाटर वेस्टेज बहुत होती है तो हम बेसिकली एक सेंसर्स बना रहे हैं जिससे अगर वो मॉइस्चर कंटेंट जो जगह का है वो डिटेक्ट करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर लीकेज होगी एक ऐप के थ्रू वो नोटिफिकेशन देगा जिससे वहाँ का जो वो है टैप या जो भी है वो ऑटोमेटिकली खुद बंद हो जाएगा.
टेक्नोलॉजी आजकल हर बंदा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कोई बच्चा हो बड़ा हो कैसा भी हो फ़ोन वगैरह सब यूज़ करते हैं. तो अगर इस प्लेटफॉर्म से हम सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकती है.
एयर पोल्यूशन बहुत इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके लिए हमने एक मशीन तैयार करेंगे जैसे कि एयर प्योरीफायर ही होगा वो, लेकिन वो चलेगा उनसे जो बायोडिग्रेडेबल जैसे कि और या फिर वेस्ट फूड होगा.
हम ऐप डेवलप करना चाह रहे हैं जिससे कि फूड वेस्टेज को हम थोड़ा कम कर पाए.
अंत में 10 उत्तम समाधान चुने गए और इन टीमों को जजों के सामने अपने समाधान पर 5 मिनट की प्रस्तुति देने के लिए कहा गया. दिल्ली की इट्स अ ट्रैप टीम के आदित्य सूद, विधु गोयल, तनुज, रोहन वाधवन और शुभम ने प्रतियोगिता में बाजी मारकर पहला स्थान हासिल किया. इट्स अ ट्रैप की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे आदित्य सूद ने बताया.
तो हमने एक ऐसी कम्युनिटी डिज़ाइन करी जहाँ पे हम एक मेंटर होगा जिसको हम ट्रेनिंग देंगे अपने वेबसाइट या अपने ऐप के थ्रू एंड वो फर्दर लड़कियों से कनेक्ट करेंगी और उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी. और ये इसलिए हमने किया ताकि हम ग्रास रूट लेवल तक जा सके. वी कैन टच द लास्ट पर्सन एंड इसमें भी हमने इम्प्लीमेंट की थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ताकि हम जो लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में पैशनेट है वो फंड भी कर पाएँ. प्लस हमने मशीन लर्निंग से हम डेटा प्रोवाइड उनको कर रहे हैं विच कैन हेल्प देम टू प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ क्रॉप दैट दे नीड टू ग्रो.
इस विजेता टीम को सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान रिबूट द अर्थ पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा. यही नहीं, हर एक देश से जीतने वाली टीम को अपने समाधान जनवरी 2020 में स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में होने वाली बैठक में प्रदर्शित करने का भी मौका मिलेगा.
यूं तो महासागरों में लगभग 2,00,000 प्रजातियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी उपलब्ध है, मगर असल में ये संख्या इससे कहीं ज्यादा होने के अनुमान व्यक्त किए गए हैं. चिंता की बात यह है कि ये समुद्री प्रजातियां जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अंधाधुंध दोहन के खतरों का सामना कर रही हैं. इन खतरों को कम करने के इरादे से संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी संधि के लिए बातचीत कर रहा है जिसके जरिए जमीनी सतह के लगभग 3/4 हिस्से को 2030 तक संरक्षित किया जा सके. समुद्र संरक्षण पर एक वैश्विक संधि को हासिल करने के इरादे से 4 दौर की बातचीत होनी है जिसमें से तीसरा दौर सोमवार को न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में शुरू हुआ. 2019 में जैव विविधता और पारिस्थितिकी सेवाओं पर वैश्विक आकलन की एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि लगभग पूरी दुनिया में इंसानों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है जिससे पारिस्थितिकी तंत्रों और जैव विविधता में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीन और समुद्रों के इस्तेमाल के बदलते तरीकों, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और जलवायु परिवर्तन की वजह से नकारात्मक असर 2050 तक और उससे आगे भी जारी रहने की संभावना है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समुद्रों के 66% हिस्से में मानव गतिविधियों के प्रभाव नजर आ रहे हैं. इनमें मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के दबाव शामिल हैं. वैश्विक समुद्र संधि होने से विशालकाय ब्लू व्हेल से लेकर छोटी छोटी प्रजातियों तक सभी को संरक्षित करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए जैव विविधता सहेजने में मदद मिल सकेगी. तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही. सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए. नमस्कार.